फिर अगली बात क्या है कि अपने बच्चों को गरीबों की सूरत हाल के बारे में याद दिलाना, जो भूख की वजह से थोड़ा सा खाना भी नहीं पा सकते। सोचिए जरा, आपके पास तो माशाल्लाह आज 4 डिशेस बनी हुई हैं, तो आज ही आपके ही जैसे मेरे से भी अच्छे और आपसे भी अल्लाह के करीब बंदे ऐसे होंगे कि जिनके घर में आज भी लस्सी होगी और शायद कहीं से कोई खजूर आ गई तो वो खा रहे होंगे। तो अगर हमारे पास होता ही ना ये सब कुछ तो क्या करते हमारे बच्चे? और लोगों के हालात की याद दिलाना जो हिजरत कर चुके हैं, या तमाम मुकामात पर अल्लाह की खातिर जिहाद में लड़ रहे हैं, सारे आपके मेरी तरह अपने डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द तो नहीं इतने मजे के खानों में बैठे हुए, तो बच्चों को उस वक्त बल्कि इन चीजों का एहसास दिलाइए ताकि जो असल तकवा मकसूद था वो हासिल हो। फिर इसी तरह रमजान से रिश्तेदारों को इकट्ठा करने और रिश्तेदारियों को बरकरार रखने के मौके फराहम होते हैं। ये रिवाज अभी भी मौजूद है। कुछ ममालिक और रिश्तेदारों के माँ बहन टूटे हुए ताल्लुकात को मुसालेहत करने यानी सुलह करने और इसे बेहतर बनाने का मौका बनता है। चलिए, चंद दिन रह गए हैं, पीछे भी टिप दी थी, आज फिर रिमाइंडर है। खुद भी और अपने बच्चों को भी कहिए, सब नानी को, दादी को, फुफी को, खाला को, मामू को, चचा चची, जो करीबी है, छोटी सी एक कॉल, क्या हाल है अंकल, आप ठीक हैं अंकल, रमजान की तैयारी कर ली? जो बातें आप सीख सिखा रहे हैं ना वो अंकल को कह दें। आप खुद तो करते ही हैं ना, बच्चों से मैसेज छुड़वाइए मीठे मीठे, प्यारी प्यारी इनकी जुबानों में, तो आप देखेंगे कि इससे आप खानदान में करीब होंगी। तो बच्चों को महसूस कराइए कि रिश्तेदारियों से ताल्लुक जोड़ना, रिश्तों को निभाना ये कितनी बड़ी नेकी है। फिर अगली टिप क्या है, खाना तैयार करने और सफाई सुथराई और खाने को मेज पर रखने के लिए वालिदा की मदद करना, ये बहुत जरूरी है। हम बस दफा ये काम सिर्फ बेटियों का समझते हैं, और माशाल्लाह आजकल की बेटियां भी अल्लाह माशाल्लाह करना चाहें तो कर लेंगी, नहीं तो नहीं। लेकिन बच्चों को भी, लड़कों को भी ये सिखाइए, अल्लाह के नबी अपने घर वालों की मदद करते थे, तो छोटे छोटे काम उनसे लीजिए, एक तो खुश होंगे और दूसरा आपका काम बटेगा। तीसरी बात है कि फैलाएंगे नहीं और टीम वर्क का तरीका बच्चे सीखेंगे। उसके बाद नमाज़े ईशा यानी तरावीह पढ़ने और ज्यादा खाना ना खाने और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए वक्त के साथ तैयार होने की तैयारी की हौसला अफजाई करना, यानी मगरिब के बाद अब आप खाने बैठे हैं तो इस चीज का ख्याल रखिए कि अब ईशा ना चली जाए। दो तरह से जाती है ईशा, खाते ही रह गए और वक्त बहुत लगा दिया, या दूसरी वजह यह थी कि इतना खा लिया कहते हैं अब तो हिला ही नहीं जा रहा, मैं इधर ही पढ़ लूंगी, मैं सो के उठूंगी फिर पढ़ूंगी। नहीं, लिख लें ईशा से पहले नहीं सोना, वरना हो सकता है कि आपकी ईशा भी चली जाए। तो बच्चों को इख्तमाम दे, पूरे घर में एक जोश हो, अब हमने ये करना है, अब हमने वो करना है। फिर उसके बाद वालदैन को चाहिए कि वह अहले खाना को सहूर की बरकात की याद दिलाएं, इससे बच्चों को रोजा रखने की ताकत मिलती है। ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है कि सहरी में खाना मुश्किल लगता है, और दूसरी बात है कि माशाल्लाह जब रात 2 बजे तक आप खाते ही रह गए मगरिब से लेकर, तो उस वक्त खाया ही नहीं जाएगा, तो ये गलत तरीका है। अल्लाह के नबी ने दुआ दी सहरी खाने वालों को, तो क्या आप और मैं अल्लाह के नबी की दुआ नहीं लेंगे? सहरी खाइए, खुद भी खाइए, और ये तभी होगा कि जब आप मगरिब और ईशा के इन बिटवीन एक मुनासिब सा मील खा लें, और ईशा की नमाज के बाद अगर आपने चाय पीनी है, कहवा लेना है, कोई ऐसी चीज के जिससे ये चीजें हजम हो, और उसके बाद आराम करें। आप देखिए, हर रात को खाना खाकर सोएं, आप सहरी में उठिए, फजर के वक्त आपके पेट में ऐसे होगा कि जैसे बल पड़ रहे हैं, तो सहरी जरूर खिलाइए, खुद भी उठिए और बच्चों को भी उठाइए। कई लोग कहते हैं नहीं सहरी में खाना मुश्किल है, वो एक सिस्टर थी ना, तो उनको सहरी बड़ी मुश्किल लगती थी पकानी, तो जब सहरी पका लेती, खा पी के सब चूल्हा झोंका साफ करती, शुक्र है एक रोजा और गुजर गया, भाई अभी तो शुरू है, कहती नहीं मेरा बुरा हो गया कि अब मुझे एक और सहरी में नहीं उठना पड़ेगा। तो बहरहाल मुश्किल तो लगता है, खाना भी खिलाना और सबसे बड़ी बात उसको उठाना, अल्लाह की बना सबसे मुश्किल काम है, एक एक के कमरे में जाकर उनको हिलाना, तो कीजिए। ये ट्रेडिशन इंशाल्लाह सुन्नत में ढलेगी तो इसका अजर भी होगा और इसकी बरकत भी होगी। फिर अगली टिप लीजिए, फजर की नमाज से पहले काफी वक्त देना ताकि वो जिन्होंने वितर की नमाज नहीं पढ़ी वो पढ़ ले, और इस तरह हर शख्स अपने रब से दुआ कर सकता है और जो चाहे मांग सकता है। यानी रात को वितर छोड़ दीजिए, और जब सुबह में आप फजर के लिए उठें तो सहरी खाने से पहले घर में एक ऐसा माहौल बना सकते हैं कि हर एक अपना अपना वितर अदा कर ले, दुआएं कर ले। तरावी अगर आप पूरी रात को ही पढ़ चुके हैं तो फिर इस वक्त तो जरूरत नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 रकत छोड़ दीजिए तरावी की, वो फजर से पहले पढ़िए और फिर वितर पढ़ने के बाद फिर सहरी खाइए और उसके बाद फजर। मस्जिद में जमात के वक्त फजर के वक्त नमाज अदा करने पर तवज्जो देना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो रात के आखिर में खाने के लिए उठते हैं, फिर वो बिस्तर पर जाकर फजर की नमाज से गफलत बरतते हैं। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। फजर भी जमात से पढ़नी है और ईशा भी पढ़नी है, और गफलत में नहीं रहना इंशाल्लाह। और आपको पता है कि फजर और ईशा जमात से पढ़ लें तो पूरी रात की इबादत का सवाब है। फिर अगली टिप लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि घर वाले रात को सोते ना रहें, अपने कुंबे को बेदार करें। इससे ये इशारा मिलता है कि घर वालों को चाहिए कि वो अल्लाह की रजा के मुताबिक काम करने में इस बाबरकत वक्त को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने पर तवज्जो दें। लिहाजा शौहर को अपनी बीवी और बच्चों को ऐसा करने के लिए बेदार करना चाहिए ताकि वो रब के करीब हो जाएं। तो बात तो हम कर ही चुके, ऊपर भी कुछ ना कुछ वक्त घर में ऐसा हो कि आप उठिए और इबादत कीजिए, उस वक्त बच्चे अपना सबक दोहरा लें। ये जो हमारा कल्चर है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस वक्त जो मुझे दिखता है, सोने और जागने के औकात मसनून नहीं है, उसकी वजह से फिर सारा कुछ ही गड़बड़ है। उसके बाद अगली टिप लीजिए, बच्चों को रोजे रखने की तरगीब दें, और अब इस बच्चे को जो पूरा महीना रोजा रखता है उसे इनाम दें। देखिए ना, रगबत है, रगबम व रहबन, बच्चों में ये जरा ज्यादा ही होता है, यानी रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट एक बहुत बड़ी पेरेंटिंग की टिप है। तो इसमें ये ना कीजिए कि आप वो सिर्फ इनाम की खातिर करें, लेकिन रगबत दिलाइए। और खास तौर पे भी ये किन बच्चों को करेंगे, मसलन जो 10 से लेके 12 या 12 से 14 साल के बीच में, इसके ऊपर तो रखना ही रखना है। तो ये इन बिटवीन एज के जो बच्चे हैं उनको रगबत दिलाइए और उनको फिर इस पे अप्रिशिएट भी कीजिए। हदीस सुन लीजिए, सही बुखारी की 1960, रबी बिन मुआविज रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि आशुरा की सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के महल्लों में, महल्ले में इलाके अमरूदे क्या कहला भेजा, जिसने सुबह खा पी लिया हो वो दिन का बाकी हिस्सा रोजेदार की तरह पूरा करे, और जिसने कुछ खाया पिया ना हो वो रोजा रखे। रबी ने कहा, यानी पहली बात अपने लफ्जों में बोल देती हूँ कि हजरत रबी जो ये कहती हैं कि आशूरे की सुबह थी, और आशूरा आप जानते ही हैं 10 मुहर्रम का दिन है। तो पैगाम सुबह एक गया कि जिसने तो कुछ खा पी लिया शुरू में वो अब ना खाए, और जिन्होंने कुछ नहीं खाया पिया वो रोजे से रहे। रबी ने कहा, फिर बाद में भी रमदान के रोजे की फर्जियत के बाद हम इस दिन रोजा रखते और अपने बच्चों से भी रखवाते, इन्हें हम ऊन का एक खिलौना देकर बहलाए रखते, यानी ऐसी ऊन की और कपड़े की बनी हुई गुड़िया लेते। और अब जाहिर है कि गुड़िया अब छोटे ही बच्चों को दी जाएगी ना, कोई 12 साल का बच्चा गुड़िया से तो नहीं खेलेगा। मुराद ये था कि बहुत छोटे बच्चों को भी रोजा रखवाते थे, जब कोई खाने के लिए रोता तो वही दे देते, यानी खिलौना दे के बहलाते यहां तक कि इफ्तार का वक्त आ जाता। ये थी वो माएँ फिर जिनसे हसन और हुसैन और मुअव्वज़ और मुआज़ जैसे बच्चे पैदा हुए। दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे। फिर नेक्स्ट टिप लीजिए कि अगर मुमकिन हो तो वालदैन को चाहिए कि वो रमज़ानुल मुबारक में बच्चों को उमरे के लिए ले जाए। चलिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सारी पाबंदियां हट जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए, तो हम भी आखिरी चंद दिन जो दौरे कुरान से बाद के दिन होंगे उसमें उमरे पे चले जाएं, और अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दे। क्या होगा इससे, इन्हें आखिरत में फायदा होगा। रमजानुल मुबारक के दौरान उमरा हज की तरह है, और रमदानुल मुबारक के आगाज में ही जाना बेहतर है ताकि हुजूम से बच सकें। तो मुमकिन हो जिन लोगों के लिए वो इसका एहतमाम कर सकते हैं। फिर अगली चीज, अब जरा शौहर और बीवी के लिए भी देख लीजिए क्या टिप है। शौहर को अपनी बीवी पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए कि वो तरह तरह के खाने पकाए और दावतों का इंतजाम करे, खाने में सादगी हो ताकि तकवा हासिल हो। इस दफा तो शायद बड़ी बड़ी इफ्तारियां भी ना होने दें लोग, लेकिन बहरहाल यह है कि शौहर को खास तौर पे इस बात पे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए कि ये नहीं पकाया, ये क्यों पकाया, और कहाँ खाने में नमक ज्यादा होने पे मुंह से कुछ गलत ही लफ्ज बोल देना। तो मिलजुल के काम कीजिए और एक दूसरे का ख्याल कीजिए। फिर अगली टिप लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड है। रमजानुल मुबारक का महीना कुरान का महीना है, लिहाजा खानदान के सब अफराद कुरान पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाएं। वालिद को चाहिए कि वह अपने अहले खाना को कुरान मजीद की तिलावत करवाएं और आयात के मानी समझने में इनकी मदद करें। इसी मजलिस में वो रोजे के अहकाम और आदाब के बारे में एक किताब भी पढ़ा सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है, ये कौन से वालिद अपने बच्चों को अपनी जुबान में कुरान की तफसीर कराएंगे, या कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को उसके लेवल पे लाकर कुरान का तर्जमा और उसका मानी बताएंगी जो खुद कर चुकी होंगी। तो अगर आप खुद सुन चुके होंगे तो बाद में फिर अपने बच्चों को उसी तरह रखें। अगर आपका ये गुमान है, नंबर एक इनको समझ नहीं आता, दूसरी बात इनको उर्दू समझ नहीं आती, तो ये आपका मिसकंसेप्शन है। डांट के देखिए बच्चे को, उर्दू में समझ आती है, उनको पंजाबी भी आती है। तो जरूरत है इस बात की, बच्चों को उनकी उम्र से कम 3 साल बड़ा समझा करें ताकि उनको बेबीज ना बनाए। आज नहीं समझ आएगा ना, कल का समझ आएगा, परसों से पूरा समझ आएगा। ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है वेस्ट में रहने वाले पेरेंट्स का कि हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आती। माजरत के साथ, क्यों नहीं आती? आपने उनको अपनी जुबान से क्यों काटा? फिर वो अपने मुल्क से भी कटेंगे। तो बहरहाल बच्चों को कुरान का दौर करवाइए। फिर नेक्स्ट टिप क्या है कि बच्चों को अपने पड़ोसियों और मिसकीनों पर खर्च करने की और बुजुर्गों की देखभाल की रग़बत दिलाएं। ये बहुत जरूरी है। देखिए, अपने बच्चों को इंसान दोस्त बनाइए। क्यों? इसलिए कि आज हमारे बच्चे मशीनों में रहने से और गैजेट्स में रहने से और हर चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होने से लोगों से दूर हो गए, इंसानों के पास नहीं बैठते। अब घर में बुजुर्ग हैं, ये दुआओं की पोटली है, खिदमत कीजिए, दुआएं लीजिए, ये रंग लगेंगी या आपको अर्शों के रंग लगा देंगी। तो घर के बुजुर्गों और इंसानों से बच्चों को करीब कीजिए। रिवायत सुनिए, अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी आदमी थे। रमदान में जिस वक्त जिब्राईल अलैहि सलाम आपसे मिलते थे, आप और ज्यादा सखी हो जाते थे। जिब्राईल अलैहि सलाम आपसे माहे रमजान में हर रात मुलाकात करते और कुरान का दौर करते थे। रावी कहते हैं कि जिस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते तो आप तेज चलती हुई हवा से भी ज्यादा सखी हो जाते थे। ये निसाई की रिवायत है 2097। तो इससे तो बस एक ही अमल ले लीजिए कि दौरे कुरान करना है, और अल्लाह ताला हमें उसका हक अदा करने की तौफीक दे। वालदैन को चाहिए कि वो अपने घर वालों को और बच्चों को रात देर तक जागने से रोकें ताकि वो गलत चीजों में अपना वक्त जाया ना करें और गलत बातों को छोड़ दें। यानी सोने और जागने के वक्त को मैनेज कीजिए। और बच्चों को आखिरत में अल्लाह से जन्नत में मुलाकात और इसके तख्त के साए में वहां मिलने की बड़ी खुशी को याद करवाएं। इस दुनिया में ये बाबरकत महफिलें और इल्म के हसूल और रोजे और दुआ के जरिए अल्लाह की इताअत के लिए इकट्ठे हों जो आखिरत की खुशी को हासिल करने का वसीला बने। और आखिरी टिप, 20 टिप्स आपसे शेयर करनी थी। दुआ कीजिए इस बात की कि मालिक, मैं अपने घर वालों के साथ जन्नत में जाऊं। एक लम्हे के लिए सोचिए, सभी सोच लें, आप जन्नत में चली गई और आप भी चले गए, यानी कपल जन्नत में है, बच्चे तो आए ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। वो जन्नत कैसी जन्नत होगी कि जिसमें आप तो हो और आपकी औलादे ना हो। अल्लाह हमें इस बुरे हिसाब से बचाए। और दूसरी बात है कि कोई एक रह गया बाहर जिसको आपने हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया था, तो जन्नत तो तभी जन्नत लगेगी जहां शौहर बीवी बच्चे बीमा अहलो इजाल होंगे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें किसी की भी महरूमी ना देना, जन्नत में जाएं और वहां अपने प्यारों के साथ हों, और इन सब से अल्लाह ताला राजी रहे। यहां तक आज का हमारा रमजान का सेशन था।